क्वींसलैंड ने कोविड टीके लगे ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए फिर से राज्य की सीमाएं खोल दी हैं, पर वहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अगले साल 5 फरवरी को अपनी सीमा प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला लिया है। क्वींसलैंड ने लगभग 230 दिनों के बाद अपनी सीमाएं पूर्ण टीकाकृत लोगों के लिए कल से खोल दी हैं और अब देश से अन्य हिस्सों से हजारों लोग हवाई और सड़क मार्ग के द्वारा क्वींसलैंड जा रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के यात्रियों को संगरोध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें एक नकारात्मक कोविड परीक्षा परिणाम प्रदान करने की आवश्यकता होगी, एक सीमा पास रखना होगा और क्वींसलैंड पहुंचकर 5 दिन फिर से परीक्षण करवाना होगा। क्वींसलैंड के कार्यवाहक मुख्य अधीक्षक रीस वाइल्डमैन ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे समझदारी से सीमा पार करें। उनका कहना है कि सही बॉर्डर पास होना जरूरी है।
If you're border vaccinated border zone resident, the XV pass, and if you're a vaccinated general person coming from a hotspot, then it's the GV pass. Those are the two key passes. Making sure you have the right pass clearly displayed, ready to go if you're driving across our border checkpoints. A lot of smiles, and that's from our police as well. This is a good news story for the Gold Coast community, especially.
वहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वह अपनी सीमा प्रतिबंधों में ढील देगा। प्रीमियर मार्क मैकगोवन का कहना है कि राज्य में 12 साल और उससे अधिक उम्र वर्ग के 80% लोगों को अब डबल डोज लग चुका है। इसका मतलब है कि शनिवार 5 फरवरी से सीमा प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी, जब राज्य की 90% आबादी का टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय आगमन और घरेलू आगमन के लिए दोहरा टीकाकरण अनिवार्य होगा, जब तक कि चिकित्सीय छूट ना हो, और टीकाकृत लोगों को आगमन पर संगरोध की आवश्यकताएं नहीं होंगी, मगर दोनों समूहों को प्रस्थान से पहले और राज्य में आगमन पर परीक्षण से गुजरना होगा। मैकगोवन का कहना है कि अगले साल की 5 फरवरी की तिथि चिकित्सा सलाह पर आधारित है।
And now having reached our 80% vaccination rate, we can now proceed with implementing our safe transition plan in line with when Western Australia is expected to achieve the 90% rate. Today I can announce that WA will ease its hard border arrangements at 12:01 a.m. Saturday the 5th of February. This date is locked in, giving Western Australians and local businesses certainty and the ability to plan and be ready for the transition early next year.
ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बुधवार यानी 15 दिसंबर से कुशल प्रवासियों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए फिर से खुलने वाली है। पहले सरकार ने दिसंबर की शुरुआत में सीमाओं को खोलना निर्धारित किया था, लेकिन ओमिक्रॉन संस्करण के चलते इसे रोक दिया गया था, ताकि नए संस्करण के विषय में और अधिक जानने के लिए समय मिल सके। सीमाओं को मानवीय कामकाजी छुट्टियों और अनन्तम पारिवारिक वीजा धारकों के लिए भी खोला जा रहा है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि वह कोरिया के 20,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सीमाओं को फिर से खोलने का स्वागत करते हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करना चुना है।
And we are looking forward to welcoming them back, as we are the many tourists and business travellers and skilled migrants. And on Wednesday of this week, we will move again forward. The borders will be reopened, both to Korea and Japan, and for skilled migration and for students, as we conclude the pause that we announced several weeks ago.
स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास कोविड बूस्टर शॉट्स को कवर करने के लिए पर्याप्त खुराक है, भले ही तीसरे शॉट का समय 1 महीने आगे लाया गया है। टीकाकरण पर ऑस्ट्रेलिया तकनीकी सलाहकार समूह ATGI ने पुष्टि की है कि लोग बूस्टर खुराक को 5 महीने बाद पा सकते हैं, जो पहले 6 महीने के अंतर में लगवाने के लिए बोला गया था। ATAGI ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए बूस्टर शॉट के रूप में मॉडर्ना वैक्सीन का भी उपयोग करने की स्वीकृति दे दी है। फाइजर बूस्टर वैक्सीन की तरह है, मॉडर्ना बूस्टर वैक्सीन का शॉट भी इस बात पर ध्यान दिए बिना किया जा सकता है कि टीकाकरण का प्राथमिक कोर्स कौन सा मिला है। मिनिस्टर हंट का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन की 151 मिलियन खुराकें हैं, जिन्हें बूस्टर के लिए अलग रखा गया था।
All of our vaccines provide strong, clear protection against serious illness, hospitalisation and loss of life. I think that's a very important point. The evidence on transmissibility, that's under consideration, and I'll let Professor Kelly and the team at Otago do their work and to consider, but they have considered all of the international evidence, and their determination was to bring forward the boosters by 1 month, and they've had extensive reviews of the whole range of international evidence in coming forward to that.
New South Wales mein aaj 804 naye mamle samne aaye hain aur ek mrityu darj ki gayi hai, jabki Victoria mein 1189 naye mamle sankraman aur 6 mautein hui hain. इस बीच नॉर्दर्न टेरिटरी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री निकोल मेनिसन कुछ क्षेत्रीय समुदायों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगले 48 घंटों के भीतर तथाकथित तालाबंदी लगाई जा सकती है. उपायों में बिना टीकाकरण वाले लोगों को लॉकडाउन में रखना शामिल है, क्योंकि अधिकारी उन क्षेत्रों की निगरानी करना जारी रखेंगे जहाँ से वायरस के सकारात्मक अपशिष्ट जल का पता लगाया गया है. पिछले 24 घंटों में क्षेत्र में कोरोना वायरस के 16 नए स्थानीय मामले दर्ज किए गए हैं. मेनिसन का कहना है कि यह निराशाजनक है कि रविवार को टेनेंट क्रीक में परीक्षण के लिए केवल 5 लोग आगे आए, और उन्होंने चेतावनी दी है कि सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.
So it is likely that we are going to have to escalate our responses to some of these communities to a lockout in the next day or two. So that means locking down people who are not fully vaccinated. And I want these communities to be prepared for that.
SBS News से पेगी जाकोमोलस की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए.